أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بات شروع کرنے سے پہلے گزشتہ جمعہ جو بعض مصلیوں کو تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ انہیں یہاں جماعت کی نماز نہیں ملی. ایسے بعض حضرات اتفاقاً دیر سے آئے اور انہیں پریشانی ہوئی, بہرحال اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہاں ایک اسکول کے کالج کے بچے آتے ہیں, وہ آتے تو ہیں 12:30 سے پہلے لیکن مسجد کو 1:30 کے بعد آتے ہیں. پورا ایک گھنٹہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے گزارتے ہیں, پتوں کو توڑنا, پتھر مارنا. میں کالج والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں پر اس معاملے میں سختی کریں. شریعت نے بہت سخت کہا ہے کہ ممبر پر امام کے آنے سے پہلے خاموش ہو جائیں اور انتظار کر کے بیٹھیں, دیری مناسب نہیں ہے. اور شرارت اور تکلیف پہنچانا تو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. چلیے قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی, ہلکی سی تفسیر اس کی سناؤں مختصر سی. اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, چھوڑ دو تم لوگ اسم کے ظاہر کو بھی اسم کے باطن کو بھی, ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی. مفسرین نے دو تفسیر کی ہے اس کی. ظاہری گناہ وہ جو عام ہے, جیسے آج کے دور میں گانا سننا ہے, یہ کوئی اسے برا نہیں سمجھتا, یا بے پردگی ہے اسے گناہ نہیں سمجھتے. ایسے گناہ بھی چھوڑو اور جو تنہائی میں چھپ کر کیا جاتا ہے, شراب ہو, جوا ہو, چوری ہو, ایسے گناہ بھی چھوڑو. یہ ہے ایک تفسیر. دوسری تفسیر ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ, ظاہری گناہ بھی چھوڑو جو انسان کے اعضاء سے, جسم سے ہوتے ہیں. آنکھوں سے ہونے والے گناہ, کانوں سے, ناک سے, زبان سے, ہاتھ سے, پیر سے, یہ سارے گناہ چھوڑو. وَبَاطِنَا, روح سے ہونے والے گناہوں کو بھی چھوڑو. یہودیوں کی ایک جماعت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, امتحاناً پوچھا, سوال امتحاناً تھا. ایک ہے سوال معلومات حاصل کرنے کے لیے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن نے حکم دیا کہ جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. ہزاروں سوالات آتے ہیں, پوچھے جاتے ہیں, یہ مستحسن ہے, بلکہ پوچھنا آدھا علم ہے کہا گیا ہے. مشکات کی شرح میں لکھا ہے. اور ایک پوچھنا امتحاناً ہے. یہودی جاننے کے لیے نہیں پوچھتے تھے, نبی کے سچے ہونے کا امتحان لینے کے لیے پوچھتے تھے. اور ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کے ممبر پر کھڑا ہوا شخص علم والا تو ہے, سب جانتا ہے, یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا. چین سے علماء کی ایک جماعت مسائل لے کر نکلی اور مدینہ منورہ پہنچی کہ اس زمانے میں مشہور علماء میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں تھے، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کوفہ کے علاقے میں تھے۔ حضرت امام مالک سے انہوں نے 40 سوالات پوچھے، لکھا ہے کتابوں میں 3 کے جواب حضرت امام مالک نے دیے اور 30 پر 7 سوال کے بارے میں فرمایا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم چین سے یہاں تک آئے اور لوگوں نے ہمیں وہاں سے بھیجا انہی سوال کے جواب کے لیے، ہم جا کر کیا بولیں؟ حضرت نے فرمایا بولو کہ امام مالک نے کہا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، اس لیے ہم بھی سب نہیں جانتے۔ بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے ہیں تو جواب میں ہم کہہ دیتے ہیں تلاش کر کے بتائیں گے، ہمارے اندر ہمارے اساتذہ تلاش کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اس قابل ہمیں بنا دیتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں، تلاش کر سکیں، مسئلے کی تحقیق کر سکیں۔ موسیٰ ابن عیسیٰ ایک وزیر تھا خلیفہ مامون کے زمانے کا، اب پتہ نہیں اپنی گھر والی کے ساتھ رات میں بیٹھے بات کر رہا تھا اور کیا اختلاف ہوا نہیں معلوم، ممکن ہے اس کے بیوی نے اپنے خوبصورتی کا دعویٰ کیا ہو، ان کو تو ناز ہوتا ہے عورتوں کو اپنے حسن پر۔ اب اسے غصہ آ گیا، اگر تم چاند سے خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ یہ طلاق جو کسی کے ساتھ معلق کر کے لٹکا کر دی جاتی ہے تو اس کا قانون یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ چاند خوبصورت ہے اور عورت خوبصورت نہیں ہے تو طلاق ہو جائے گی، اگر ثابت ہو جائے وہ عورت خوبصورت ہے چاند سے تو طلاق نہیں ہوگی۔ خلیفہ کے دربار تک بات پہنچ گئی، سارے علماء تھے ان سے سب سے پوچھا گیا، سب نے کہا کہ عورتوں کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے اور تشبیہ کا قانون ہے کہ جس سے تشبیہ دی جائے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، تم پھول کی طرح ہو کا مطلب یہ ہے کہ پھول اصل ہے اور تم اس جیسی ہو، تمہارے اندر پھول کا کچھ حسن ہے، یہ ہے مطلب اس کا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت چاند سے خوبصورت نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اس مجلس میں، خلیفہ مامون ذرا خاص توجہ دیتے تھے ان کی طرف، ان سے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا طلاق تو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے بے شک انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا، یعنی مطلب سارے جاندار، سارے غیر جاندار، سارے درخت، سارے پھل، سارے پھول سے زیادہ خوبصورت، کہ سب ایک جیسے لیکن سب الگ الگ، سب کے انگوٹھوں کی لکیریں سب کی الگ الگ، کسی اچھے بڑے ڈینٹسٹ سے پوچھو وہ بولے گا سب کے دانتوں کے سانچے الگ الگ، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن سب الگ الگ ہیں، اور دور سے تو ہمیں سارے چائنیز ایک جیسے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سارے ہندوستانی ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن سب الگ فرق فرق، خدا نہ کرے باپ بیٹے ایک جیسے ہوں اور دونوں بڑی عمر کے ہو جائیں اور شوہر آئے تو ماں سمجھے، عورت سمجھے گی کہ بیٹا آ رہا ہے، بیٹا آئے تو ماں سمجھے گی کہ شوہر آ رہا ہے، کتنی پریشانی ہوگی۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، अलग अलग रंग अलग अलग शक्लें वमिनायातिही खल्कुस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफु अलसिनतिकुम वअल्वानिकुम इन फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलिमीन। अल्लाह की निशानियों में से है आसमानों और जमीनों को बनाना और तुम्हारे रंगों का अलग अलग होना, तुम्हारी जबानों का अलग अलग होना, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए अहसनुल खलाइक है इंसान, हमने सबसे खूबसूरत पैदा किया। हजरत सहाबे किराम के दरबार में मौजूदगी में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक आयत नाजिल हुई है, वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के असल से पैदा किया, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, फिर हमने उसे कतरा बनाया और एक महफूज जगह में उसकी हिफाजत की, जिसे रहमे मादर कहते हैं, माँ की थैली, उसका नाम ही रहम है, इसलिए कि उस थैली के अंदर रहम का जज्बा है। ऐसा जज्बा है कि एक कतरा हो तो उसे वो पकड़ कर रखती है, अगर थैली चौड़ी आड़ी रह जाए तो कतरा लुढ़कने का खतरा है और फट जाने का और टूट जाने का खतरा है। फिर ज़रा बड़ा होता है तो थैली उसे दबाती नहीं है, थैली दबाएगी तो सर नाक कान बिंगे टिंगे हो जाएंगे। ثم خلقنا نطفة علقة, फिर हम उस नुतफे को खून बना देते हैं, खून का डल्ला बना देते हैं। फखलकना लालकता मुजगतन, फिर उस खून के डल्ले को हम गोश्त में तब्दील करते हैं। फखलकनल मुजगता इज़ामन, फिर उस गोश्त में हम हड्डियां बनाते हैं। फकसौनल इज़ाम लहमन, फिर उस हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं। मान शनाह खलकन आखर, फिर वो गलीस कतरा जिसे कपड़े में लग जाए तो धोना सबके नज़दीक वाजिब है, बदबूदार कतरा आदमी जिससे कराहत करे, नफरत महसूस करे, बेजार हो लग जाने पर, उसे अल्लाह एक प्यारी सी शक्ल देते हैं, ऐसी शक्ल देते हैं कि माँ बाप उसे देखते वक्त नहीं है, सुनते हैं, उसके अंदर खुशबू महसूस करते हैं, उसके पेट से नाक लगाकर माँ नाक से सांस लंबी खींचती है कि उस जिस्म से उसे खुशबू आती है उससे भी प्यार होता है। यहाँ तक कुरान की आयत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत फरमाई, जो जैसे मुशायरों में होता है, लोग दाद देते हैं अशआर पर, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, ऐसे ही हजरत उमर फारूक ने दाद दी, फरमाया फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकी, बहुत प्यारा पैदा करने वाला बाबरकत अल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मुंह से जो जुमले हैं वो आयत का बकिया हिस्सा है, ये फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन कुरान की आयत का टुकड़ा है जो अल्लाह ने तुम्हारी जबान से निकाल दिया। अहसनुल खालिकीन, सबसे खूबसूरत पैदा करने वाला, दो हिस्सों में पैदा किया है, एक हिस्से को रूह कहते हैं, एक हिस्से को जिस्म कहते हैं। ज़ाहिरल इस्म का ताल्लुक जिस्म से होता है, गुज़िश्ता जुमा भी इशारा करते हुए गुजर रहा था मैं कि जिस्म की सफाई, जिस्म की पाकी इस्लाम में बहुत महबूब है और शायद दुनिया में कोई उतना पाक हो नहीं सकता जितना पाक मुसलमान होता है। पांच वक्त चेहरा धोता है, पांच वक्त नाक में पानी डालता है, साफ करता है। वरना डॉक्टर कहते हैं शुगर के मरीज सिर्फ मुसलमान ऐसे होते हैं जो पांच वक्त पैरों को धोने की वजह से उनके पैर महफूज रह जाते हैं, वरना सब की बीमारी शुरू होती है पैरों से, उंगलियां और पैर काटने की नौबत आती है। बड़ी हिफाजत का इंतजाम, साइंस एक तरफ, मुझे उससे ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूह की हिफाजत, बोलो अगर तुम्हारे घर के सामने नहर हो, शफाफ मीठा पाक पानी बहता हो और तुम सवेरे उठकर उसमें डुबकी लगाते हो, फिर काम में जाते हो, दरमियान में खाने का वक्फा मिलता है, फिर आते हो, फिर एक दो चार मिनट डुबकी लगाते हो, इस तरह दिन में अगर तुम पांच मर्तबा उस शफाफ नहर में डुबकी लगाओ तो क्या तुम्हारे जिस्म में मैल कुचेल रहेगा? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो पाक और साफ शफाफ रहेगा। आका ने फरमाया ऐसे ही अगर कोई शख्स वजू करता है और पांच वक्त नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म से वो जो गुनाह के असरात हैं, बातिनी असरात हैं, वो गुनाह जाहिरल इस्म हो या बातिनल इस्म हो, दोनों गुनाह के असरात पाक हो जाते हैं। इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज आदमी को बुराइयों से, बड़ी हो और छोटी बुराइयों से रोकने वाली है। नमाजी बचता है कुदरती तौर पर बुराइयों से। फुला ऐसा है कि नमाज भी पढ़ता है बुराई भी करता है, हो सकता है अभी नमाज में कमी होगी, वक्त लगेगा, कोई काम मिनटों में नहीं होता। अल्लाह पाक चाहते तो ये दुनिया एक सेकंड में बना सकते थे। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैयन अन यकूल लहु कुन फयकून, अल्लाह का मामला तो कुन का है, वो इशारा करें, बोले, इरादा करें तो वो हो जाता है लम्हों में। फिर फी सित्तति अय्यामिन, ये जमीन आसमान बनाने में छह दिन लगे, क्यों? हमें सबक दे रहे हैं, मिनटों में होने का सबक मत सीखो, ऐसा नहीं होता काम। ये जितने जुए खेलने वाले हैं या हराम तरीके से कमाने वाले हैं, ये सब मिनटों के मालदार बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं और हमेशा नुकसान में रहते हैं, या घोड़े के पीछे भागे या पत्तों के पीछे चले, सबका यही हाल है, मिनटों में मालदार बनने की ख्वाहिश, गलत कामों में पड़ जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। वो जो ताजिर करता है पांच पांच पैसे नफा के, आठ आने नफा के, उसमें बरकत ही बरकत, राहत ही राहत। चलिए, तो ये पाकी इस्लाम में पसंदीदा है, अत्तहारत शत्रुल ईमान, आधा ईमान कहा गया पाकी को। तो यहूदियों ने पूछा या रसूल अल्लाह ये रूह क्या है? आयत नाजिल हुई वयस अलु नकानी रूह, नबी जी लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुल रूह मिन अम्री रब्बी, आप कह दीजिए रूह एक आर्डर को कहते हैं जो परवरदिगार की तरफ से है। फनफखना फी मिन रूहिना, हमने मरियम में अपनी रूह को फूंका, कुरान की आयत। रूह को फूंका के माने अल्लाह अपनी जान उसमें डाल दिए हैं, अपने आर्डर को फूंका। वरना बच्चा पैदा करने के लिए दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं सब अल्लाह के आर्डर ही से होते हैं, लेकिन उसके लिए जरिए के तौर पर माँ बाप आते हैं, इस्तेमाल होते हैं। यहाँ बगैर माँ बाप के काम के अल्लाह सीधे अपने आर्डर से पैदा किए हैं, इसलिए फनफखना फीही मिर रूहिना फीहा मिर रूहिना। अब कुरान की आयत लेकर ईसाई आएंगे आपके पास, देखो कुरान में अल्लाह बोला है फनफखना फीही मिर रूहिना, हमने मरियम में हमारी रूह को फूंका, इसलिए मरियम के पेट में पलने वाला बच्चा खुदा का बच्चा हुआ। ये कुरान ने कहा कि कुरान की ऐसी आयतें ढूंढ ढूंढ कर गलत मतलब निकालेंगे फितने की तलाश वाले। कुरान की साफ आयत है लम यलिद वलम यूलद, कि न उसने जना न वो किसी से जना गया। अब ये फनफकना फीहा मिर रूहिना की आयत और लम यलिद की आयत टकराती है। लम यलिद की आयत क्लियर आयत है, उसमें साफ है कि कोई बच्चा नहीं खुदा का। फनफकना फीहा मिर रूहिना में रूह का मतलब वाजह नहीं है, इसलिए शक में पड़ जाते हैं लोग। रूह का तर्जमा है अम्र, आज तक की साइंस भी उसे पकड़ नहीं पाई। सुना है कुछ साइंसदानों ने सकरात के मरीज को एयर टाइट बॉक्स में बंद कर दिया कि इसके अंदर से रूह निकल कर जाएगी तो हम पकड़ लेंगे, तलाश कर लेंगे। अचानक बॉक्स फटा और ये लोग देख नहीं पाए और रूह निकल गई। इस रूह का हमारे से एक रिश्ता होता है, पूरे जिस्म में रूह फैली हुई होती है। दो हिस्सा है जिसमें रूह नहीं होती है, एक नाखून जो बाहर निकला हुआ नाखून है वो, और एक बाल हमारे जिसे काटने पर तकलीफ नहीं होती। इसीलिए तकलीफ नहीं होती कि उसमें रूह नहीं है। और बेरूह चीज जिस्म में ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाखून के सिलसिले में साफ हुक्म दिया गया कि उसे काटते रहा करो। बाल के सिलसिले में चूंकि जिस्म से जब तक लगकर है इसलिए गोया उसके अंदर भी रूह है, इसलिए कहा गया कि उसे तुम अपने अपने तरीके के मुताबिक रख सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये जो रूह है ये यहां से निकल कर जाती है जब इंसान मर जाता है, और ऐसा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता उसका। उसका कब्र में होता है तो फिर रूह वापस आती है, और जो कब्र के सवालात हैं मर रब्बू का व मन नबीयू का व मा दीनू का, ये सवालात इंसान के जिस्म से नहीं होते। जिस्म तो जवाब नहीं दे सकता, जिस्म के अंदर कोई हैसियत नहीं है बगैर रूह के। जिस हिस्से की रूह निकल जाए वो हिस्सा बेकार हो जाता है। जैसे फालिज वाले, जिस पर फालिज का असर होता है उसका वही हाल होता है कि उस हिस्से की रूह निकल जाती है। तो सवालों जवाब के लिए रूह कब्र में वापस आती है, फिर उसे सवालों जवाब उससे होते हैं। कब्र में आदमी जिंदा होता है और महसूस करता है कि मुझे दफन करने वाले अभी यही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, इसलिए उनके चप्पल की आवाज भी सुनता है, हदीस पाक में है। और मुहद्दिसीन ने लिखा है लफ्ज चप्पल बताता है कि नंगे पैर कब्र के पास नहीं चलना चाहिए। ये जो कब्र के एहतराम में चप्पल निकाल लेते हैं ये एहतराम नहीं है। हमारा दीन जो तरीका सिखाता है वो तरीका है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के अल्फाज यूं ही नहीं होते, वो फरमा सकते थे कदमों की आवाज सुनता है। चलिए अजीजान मुहतरम, फिर रूह निकल कर चले जाती है, फिर आप में से कोई कब्र के पास जाता है सलाम करने के लिए, तो अल्लाह रूह से कहते हैं जाओ, तुम्हारा अपना आया है सलाम करने के लिए, उसका सलाम लो, उसका फातिहा लो, उसका जमसूरा लो, कुल वल्लाह वहद लो, तोहफे लो और उसे वापस भेज दो। रूह आती है तो वो आपस में गुफ्तगू करते हैं जिनके रूह आसपास होते हैं, कौन आया था, मेरा फुला आया था, ये तोहफा देकर गया। हम में से कोई जाता है और जब करीब का रिश्तेदार जाने के बाद उसकी रूह अलग होकर रूहों के मरकज को पहुंचती है तो वो सब मिलते हैं। कैसा है बेंगलोर, कादरिया का क्या हाल है, मेरा बेटा बहुत शरीर था, अब कैसा है, हमारे भाई मुझे याद करते हैं, ये सब सवालात होते हैं। वो आपस में मिलते हैं, वो तन्हाई के घर को नहीं पहुंचते, हम लोग तन्हाई के घर में, यहां कोई एक दूसरे को पूछने वाला नहीं है। मुखलिसीन की बात अलग है, बस जैसे हमारे बात में याद आ गई, सदर अभी कल परसों दो तीन दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, साबिक सदर का, सारा आलम रो रहा था जबकि उसके पास एक घर नहीं है ढंग का, सारा आलम रो रहा था एक कार नहीं है उसके पास, सारा आलम मातम मना रहा था, हिंदुस्तान नहीं सारा आलम, इसलिए कि दुनिया को बहुत जमाने के बाद औरंगजेब जैसा शख्स मिला कि एक जमाने तक रहा सदर बनकर लेकिन दुनिया अंदर नहीं आई। अब रहा दीन, वो उसका उसके अल्लाह का मामला है, अंदर से कौन अल्लाह से कितना करीब है कौन जाने। हजरत थानवी से किसी ने पूछा कि तुम बेहतर हो या कुत्ता बेहतर है, ऐसे सवालात भी करते थे लोग। हजरत ने फरमाया वल्लाहु आलम, अगर ईमान के साथ मेरी मौत हुई तो उससे मैं बेहतर हूं, खुदा की नाराजगी के साथ गया तो वो तो बहुत बेहतर है मुझसे। हम किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते कि वो गलत आदमी था, इसलिए कि बातिन जो है उसकी रूह कैसी थी वो अल्लाह का उसका मामला है। जहां तक दुनिया, ये हजरत उमर हजरत अबू बकर से जो सिलसिला चला कि हुकूमत तो मिलती थी लेकिन हुकूमत जिस्म को संभालने के लिए होती थी, रूह पर असर नहीं करती थी, अकड़ नहीं आती थी उन्हें, गलत दौलत जमा नहीं होती थी उनके पास। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज, वो पहले से शहजादे थे और लोग कहते हैं कि वो चलकर जाते तो दूसरे दिन तक उस जगह के लोग पहचान लेते थे यहां से उमर बिन अब्दुल अजीज गए हैं, ऐसी खुशबू रहती थी, इतना कीमती इत्र लगाते थे। और बादशाह बने तो ये आलम हुआ कि घर आए तो बच्चियों ने मुंह पर हाथ रखा और दूर गई। उमर बिन अब्दुल अजीज समझे कि शायद बदबू आ रही है मुझसे, बीवी से पूछा क्या बात है, नहीं खाने को कुछ नहीं था, प्याज एक पड़ा था वो बच्चियों ने खा लिया है, आपके मिजाज को तकलीफ ना हो इसलिए दूर जा रही थी बच्ची। बादशाह के बच्चे, खलीफतुल मुस्लिमीन के बच्चे, इसकी मिसाल इस्लाम के सिवा शायद ही दुनिया में कहीं मिले। अल्लाह उसे जजाए खैर दे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, दर्जात को बुलंद करे। हिम्मत वाला शख्स था, दुनिया बेजार था, आखिरत का दर्द रखने वाला था, अल्लाह उसे जजाए खैर। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरआनिल अज़ीम। وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ قَدِيمٌ بَرُّ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ.